अभूतपूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी। उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताजा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्ने आपके लिए खोलते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते हैं। खेल, संस्कृति और तमाम पहलुओं पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट्स आपको सुनवाते हैं। तो आज भी इस अंक में बहुत कुछ खास है। मैं कमल कुमार प्रजापति आप सभी श्रोताओं का आज के इस अंक में स्वागत करता हूँ। तो श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में हम आपको एक विशेष रिपोर्ट सुनवाने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में संस्कृति और परंपरा में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका रही है, और विशेष रूप से हम सभी ने मेघालय की जनजातियों के बारे में तो सुना ही होगा, जहां पर महिलाएं सांस्कृतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर हमेशा से ही सशक्त रही हैं, और राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की विभिन्न वर्तमान योजनाओं से महिलाओं को और सशक्त किया जा रहा है, उन्हें आर्थिक तौर पर सहायता दी जा रही है और वे अब पूर्वोत्तर राज्यों में समाज और परिवार का संचालन कर रही हैं। तो आइए ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं।
भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से को उसकी नैसर्गिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और जनजातीय परंपराओं के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र की एक और विशेषता है जो इसे बाकी क्षेत्र से अलग बनाती है, वो है यहाँ की महिलाओं का सशक्तिकरण।
बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, कुछ नहीं मैं किसी के सर का ना मझधार में नैया, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया,
उत्तर भारत की महिलाएं केवल घर की सीमाओं तक नहीं हैं, वे समाज, परिवार, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और नेतृत्व हर क्षेत्र में सक्रिय और सक्षम भूमिका निभा रही हैं। ये क्षेत्र नारी सशक्तिकरण का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां परंपरा और आधुनिकता के बीच महिलाएं सेतु बन चुकी हैं। उत्तर के 8 राज्यों में महिलाओं को पारंपरिक रूप से विशेष सम्मान और अधिकार प्राप्त हैं। मेघालय जैसे राज्यों में खासी, गारो और जयंतिया जनजातियों में मातृ सत्तात्मक व्यवस्था प्रचलित है, जहां संपत्ति का उत्तराधिकार सबसे छोटी बेटी को मिलता है और विवाह के बाद पुरुष पत्नी के घर में रहता है। इस परंपरा ने महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वायत्त बनाया है। वे न केवल घर की व्यवस्था करती हैं, बल्कि व्यापार, खेती और सामाजिक निर्णयों में भी अग्रणी रहती हैं। शिलांग और इसके आसपास के बाजारों में बड़ी संख्या में दुकानों का संचालन महिलाएं करती हैं। वे उत्पाद तैयार करती हैं, बेचती हैं और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती हैं। मिजोरम की मिजो जनजाति की महिलाएं भी पारंपरिक बुनाई और हस्तशिल्प में दक्ष हैं। वे अपने हाथों से बने उत्पादों को बेचकर आजीविका अर्जित करती हैं और आत्मनिर्भरता का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। नागालैंड की अंगामी और एओ जनजातियों में महिलाएं खेती, पशुपालन और घरेलू कारीगरी में भाग लेती हैं। समय के साथ महिलाओं की सामाजिक भागीदारी में वृद्धि हो रही है और वे पंचायतों तथा समुदायों के निर्णयों में आवाज उठा रही हैं। है त्रिपुरा की जनजातियों जैसे रिंग, चकमा और लुशाई की महिलाएं पारंपरिक बांस उत्पादों और हथकरघा सामग्री के निर्माण में पारंगत हैं। इनके बनाए उत्पादों के स्थानीय बाजार से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच है। अरुणाचल प्रदेश की अपातानी महिलाओं का चावल की खेती में महत्वपूर्ण योगदान है। वे खेत में काम करने से लेकर फसल बेचने तक की सभी जिम्मेदारियां निभाती हैं। समुदाय की संपूर्ण आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में उनकी भूमिका का ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सिक्किम में महिलाएं ऑर्गेनिक खेती में आगे हैं। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन के अंतर्गत महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण और सहायता दी जाती है, जिससे वे बाजार की मांग के अनुसार उत्पाद तैयार कर रही हैं और अपनी उपज को ब्रांड बनाकर बेच रही हैं। पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं न केवल अर्थव्यवस्था में बल्कि संस्कृति और परंपराओं में भी केंद्र में हैं। मणिपुर की रास लीला नृत्य परंपरा, जिसमें महिलाएं श्री कृष्ण और राधा की भूमिका निभाती हैं, उसकी ख्याति देश विदेश तक फैली है। नागालैंड में हर वर्ष मनाया जाने वाला हॉर्नबिल उत्सव राज्य की विविध जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत चित्रण करता है, जिसमें महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा, गीत संगीत और खान पान के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। ये महिलाएं त्योहारों की आयोजक भी होती हैं, कलाकार भी और संस्कृति की रक्षक भी। मेघालय में पर्वों के दौरान महिलाएं पारंपरिक ढोल बजाने, वाद्य यंत्रों पर लय रचने और पारिवारिक पकवानों की व्यवस्था संभालने में माहिर होती हैं। उनकी उपस्थिति के बिना कोई पर्व संपूर्ण नहीं माना जाता। इसी तरह मिजोरम का चपचरकुट, सिक्किम का लोसुंग और अरुणाचल का सोलुंग उत्सव महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना अधूरा है। इन सांस्कृतिक पर्वों में महिलाओं की भागीदारी केवल परंपरा निर्वाह की नहीं है, बल्कि वे अब इन आयोजनों की योजनाकार, प्रबंधक और प्रस्तोता भी बन चुकी हैं। इससे उनकी नेतृत्व क्षमता का भी विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास और सामाजिक जागरूकता दोनों बढ़े हैं। अब वे केवल घरेलू भूमिकाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रशासन, राजनीति, खेल और उद्यमिता में भी आगे आ रही हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं ने पूर्वोत्तर की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, महिला शक्ति केंद्र, स्टैंड अप इंडिया और सखी वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाओं से महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में नई दिशा मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के अंतर्गत असम, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में हजारों महिलाओं को स्वरोजगार, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने का अवसर मिला है। इन प्रयासों से महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ी है और उनका जीवन स्तर उच्च हुआ है। मेघालय सरकार की क्लस्टर विकास योजना और मणिपुर की स्टार्टअप योजना में महिलाओं को विशेष स्थान मिला है। वे अब उद्यमिता की ओर भी अग्रसर हो रही हैं, स्वयं की इकाइयां स्थापित कर रही हैं और अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। नई पीढ़ी की महिलाएं अब न केवल शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, बल्कि तकनीकी क्षेत्रों, मीडिया, विज्ञान और प्रशासन में भी आगे बढ़ रही हैं। पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं न केवल अपने परिवार की रीढ़ हैं, बल्कि समाज की शक्ति भी हैं। वे अपनी परंपराओं को संजोते हुए आधुनिकता को अपनाकर एक नई दिशा और पहचान रच रही हैं। इनके सशक्त और संतुलित नेतृत्व से ये क्षेत्र विकास की ओर लगातार अग्रसर है।
हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें अभी 2025 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है और उन्हें सम्मान एक सामाजिक काम के लिए दिया गया है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के एक जिले वेस्ट सियांग जिले में ड्रग्स के खिलाफ या ड्रग्स के प्रति जो ड्रग्स की लत में या शराब की लत में लोग पड़ जाते हैं उनको इससे मुक्त करवाने की दिशा में काम किया है और उन्होंने रिहैबिलिटेशन की दिशा में इसमें बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए सरकार ने उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया है। तो आइए हम उनसे सीधे जुड़ते हैं। उनका नाम है यंगिन गामलिन जो मदर विजन संस्था की संस्थापक हैं। बहुत बहुत स्वागत है गामलिन मैम आपका प्रोग्राम में।
थैंक यू।
सबसे पहले अपने बारे में हमें बताएं कि आपको कैसे इंस्पिरेशन मिला, कैसे आपने सोचा कि जो ड्रग्स एडिक्टेड लोग हैं या शराब की लत में पड़ जाने वाले लोग हैं उनको मुक्त कराया जाए, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाके में।
शुरुआत में हमारा यहाँ इतना ड्रग वगैरह नहीं होता था, तो बाद में देखा तो मेरा खुद का बेटा का करेक्टर में चेंजेस आया, तो बाद में पता चला ये ड्रग है बोल के, तो उसमें बहुत सारा तकलीफ होता था जब ड्रग एडिक्टेड है। तो हम लोग का एक एनजीओ हमने खोला था 2013 में, तो हम लोग ने उसको प्रॉब्लम को देख के, मेरा अपना प्रॉब्लम को देख के बहुत माँ से हम लोग डिस्कस किया, तो सबने ये सेम प्रॉब्लम पेश किया बोल के, तो हमने यहाँ वेस्ट सियांग में आलो डिस्ट्रिक्ट में 10-15 माँ हमने शुरू किया था, 15 मेंबर था जब हमने ये शुरू किया था। हमने तब हमें इतना आइडिया नहीं था ड्रग क्या चीज है, लेकिन अपना प्रॉब्लम लेके हम लोग निकला ड्रग अवेयरनेस कैंपिंग करने के लिए, अपना स्टाइल में निकला। हमने ये अवेयरनेस कैंपिंग करना शुरू किया एलोंग टाउन में, कम से कम 45 सेक्टर था उस समय, वो सेक्टर को हम लोग एवरी सैटरडे एवरी फ्राइडे शाम का 5 बजे से लेके दिन को अपना काम करता था, अवेयरनेस कैंपिंग शुरू किया। तब बहुत सारा माँ का अच्छा रिस्पॉन्स आया। ड्रग का साथ साथ हमने क्लीनलीनेस में, एलोंग टाउन उसमें बहुत गंदा था, हम क्लीनलीनेस में सफा किया, एवरी सैटरडे मार्केट एरिया को सफा करता था, जहाँ भी अवेयरनेस कैंपिंग करता था उसमें हम लोग का मॉडल विजन टीम बनता था, उस टीम में हम लोग ये सफाई भी इंक्लूड कर देता था, अपना अपना सेक्टर को सफाई रखना है। तो बीच में हम लोग को एक रिकवरी एडिक्ट कैनेडी वग्र जो कुछ 18 ईयर्स इसमें एडिक्टेड होके रिकवर, जब वो हम लोग का साथ जुड़ा वो 2 साल टीम में था, तो उन लोग को लेके आया, तो उनसे हमें आइडिया मिला, फिर उसको लेके हम लोग अवेयरनेस कैंपिंग करना शुरू किया, तो बहुत सारा लोग समझ में आ गया, तो वो हमारा साथ जुड़ने लगा। शुरू शुरू में तो हम लोग का यहाँ में इसको खराब चीज मानता था, कोई अपना बारे में बताता नहीं था, तो ये क्या चीज है वो छुपा के रखता था। जब हम लोग ओपनली बात करना शुरू किया तो वो लोग हमारा सामने आना शुरू किया, उसको क्या किया जाए। तो हम लोग ने यहाँ एक जब जरूरी था तो बोल के हम लोग ऑफिस खोला, उस ऑफिस में हम लोग शाम का 5 to 9 रात का क्योंकि जिनको सब बिजी रहता है, कोई शाम को ही आके काउंसलिंग करवाता था। फिर उनका बच्चा को हम लोग जो एब्यूज स्टेटस में है, जो एकदम एडिक्टेड हो चुका होता है, तो उसको हम लोग बाहर भेजना शुरू किया, बाहर रिहेब सेंटर में, नागालैंड में, असम में।
ये बहुत सारे चैलेंजेस भी जैसे आपने बताया आते हैं। अभी आपके जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में आप लोग भेजते हैं या अपना भी आप लोग काउंसलिंग करवाते हैं, मेडिटेशन भी हमने सुना है आप करवाते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज आप ड्रग एडिक्टेड लोगों को करवाते हैं, क्या आप चेंजेस देखते हैं और कैसे आप लोग उनके साथ टैकल करते हैं और कितने लोग अभी आप करवा चुके हैं मुक्त जो ड्रग लेते थे पहले?
2018 में हम लोग सेल्फ हेल्प बेसिस में एक टू रिहेब सेंटर खोला, एक्सपेरिमेंट बेसिस में। तब तक तो हमारा पास कम से कम 7 एडिक्ट रिकवरी एडिक्ट था, जो हमने बाहर भेजा उसको वापस आके हमने अफ्तर केयर किया ऑफिस में, तो वो लोग क्लीन होके 2-3 साल हो गया था, तो उन लोग को लेके हम लोग खुला। अभी तक तो हम लोग का सेंटर से हम लोग 700 अबव तो हम लोग ट्रीटमेंट कर चुका है।
अच्छा,
2018 से।
अच्छा, अभी तो जैसे अरुणाचल प्रदेश का ये वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है, इसमें ही आपने काम करने का शुरुआत किया है, तो आगे आपको लगता है कि आप अपने इस रिहैब सेंटर्स को या और काम को आगे भी डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाएंगे या इसी तक रखेंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके?
इसका रिहैब सेंटर टू जैसे अभी हमारा गवर्नमेंट ने बहुत वो इनिशिएटिव लेना शुरू किया है, जगह जगह पे गवर्नमेंट रिहैब खुल के रखा है अभी, तो अभी धीरे धीरे वो लोग स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा रिहैब सेंटर का परमिट को वो लोग हर उसमें यूज करने का भी कोशिश कर रहा है, तो हम लोग कोई कोई रिहैब सेंटर जो हम लोग को सजेशन मांगता है उसको तो हम लोग सजेशन देता है, तो हम लोग खुद नहीं करके भी हम लोग गवर्नमेंट का पॉलिसी में पार्टिसिपेट करके हर चीज में हम लोग थोड़ा बहुत मदद कर सकते।
तो मैं ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि बहुत से लोग अभी आपको सुन रहे हैं, तो आप ड्रग एडिक्टेड लोगों के साथ काम करती हैं, कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे बहुत सारे हमारे सुनने वालों को कितनी बड़ी ये समस्या है और अगर कोई इस चीज में पड़ जाता है तो उसके लिए बाहर निकलना क्या मुश्किल है या फिर उसके लिए अगर वो कुछ टेक्निक्स या कुछ काउंसलिंग लें आसान हो जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों से?
सुनने वालों से तो मैं यही कहना है, ये हम लोग एक बार ड्रग एडिक्टेड होने के बाद बच्चा को एक दुश्मन का नजर से देखता है, लेकिन हम लोग तो यही बोलता है बच्चा को थोड़ा प्यार से हैंडल करे, और उसमें एक बार पस गया तो वो पसते रहे बात नहीं, बाहर आने का चांसेस है। मेरा इधर का भी अभी रिकवर क्लब में हम 40 बच्चा अभी तो कोई 3 साल 4 साल 5 साल को भी 2 साल को भी 1 साल है रिकवर क्लब ना, वो हो सकता है तो बाकी भी आ सकता है। और आजकल ये भी हो गया कि गवर्नमेंट ने OST सेंटर एक तो खोल दिया हर मेडिकल में ना, OST ओपियम सब्स्टिट्यूट थेरेपी बोल के, वो भी वही है लीगल वाला है, जो जो हम लोग वो बच्चा लोग खरीद के लेता है, इलीगल है ये तो उसका एक लीगल फॉर्म है, वो लोग लेता है वो तो उसको खरीदना पड़ता है, उसका टाइमिंग 8 आवर्स होता है जबकि यहाँ का टाइमिंग 24-35 आवर्स का होता है। माँ बाप लोग से मेरा ये सजेशन है कि अब ज्यादा दुख मत है ये, लेकिन उसको अपना बच्चा को एक बीमारी ही डिक्लेयर कर दिया, एडिक्शन इज ए डिजीज बोल के सब तो डिक्लेयर कर दिया ना, उसको बीमारी का रूप में दिख के उसको ट्रीटमेंट कराइए। अभी रिहैब सेंटर बहुत है और जो नहीं जा पाता है तो OST हम लोग को अरुणाचल में तो यहाँ में हमारा अलंग में भी OST सेंटर है, या मॉर्निंग सुबह जाके एक टेबलेट खाया तो दिन भर रहेगा, फिर कल आके एक टेबलेट खाए के ऐसे करके आदमी नॉर्मल लाइफ आराम से जी सकता है। और ये सजेशन है हम लोग ड्रग एडिक्टेड जो रिकवर होके वापस आता है उसको भी एक एडिक्टेड का रूप में दिखता है, लेकिन एक जो रिकवर होके बच्चा आता है उसको भी आप वो मदर लोग जिसका बच्चा ऐसा तकलीफ में है उसका साथ
उससे मिलवाना जरूरी है।
उससे मिलवाना, उसको डिस्कस करके उसका साथ कुछ एक्टिविटीज करके बच्चा को काउंसलिंग करने देने से वो भी उस बच्चा जो रिकवर नया हो गया उसको भी एनकरेजमेंट मिलेगा, अरे पब्लिक हमको इम्पोर्टेंट है बोल के वो भी अपना लाइफ सही ढंग से जी पाएगा, फिर रिलेप्स कम जल्दी नहीं होगा और इनका भी कुछ दुख सुख में मदद कर सकता है। इसलिए हम तो यही सजेशन है कि हर कोई उसको उस नजर से ना देखे जिस नजर से पहले देखता था, और उसको भी थोड़ा उसका साथ भी मिलजुल के बात उत करके उसको भी आगे बढ़ने का मौका दे।
बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया कि ड्रग एडिक्टेड जो लोग हैं उनको लेके जागरूकता और उनके परिवार में बहुत जरूरी है जागरूकता का होना। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने जो एक्सपीरियंस है आपका जो काम है उसके बारे में भी बताया, और आपने एक मैसेज जो दिया है वो जरूर हमारे सुनने वालों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
त्रिपुरा हमारे देश का किस तरह से एक अभिन्न राज्य है और यहाँ की संस्कृति, परंपरा, कला, खान पान और यहाँ की जीवन शैली किस तरह की है, तो आइए सुनते हैं त्रिपुरा के बारे में ये खास विवरण।
त्रिपुरा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा सबसे छोटा राज्य, अपनी अनूठी सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य विविधता और परंपराओं का एक ऐसा मेल है जो हर किसी को आकर्षित करता है। त्रिपुरा का नाम संस्कृत के त्रिपुर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है तीन शहरों का राज्य। ये राज्य कभी त्रिपुरी राजवंश का हिस्सा था, जिन्होंने लगभग 500 वर्षों तक यहाँ शासन किया। सन 1949 में त्रिपुरा भारत का हिस्सा बना और तब से ये अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। त्रिपुरा की पहचान यहाँ की आदिवासी जनजातियों से भी जुड़ी है। यहाँ कुल 19 आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें त्रिपुरी, रियांग, जामतिया और चकमा प्रमुख हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा, परंपरा, पोशाक और जीवन शैली है, जो राज्य को एक सांस्कृतिक रंगमंच बनाती है। इन जनजातियों के त्योहार, नृत्य और संगीत त्रिपुरा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। त्रिपुरा की कला और हस्तशिल्प भारत भर में अपनी अनूठी शैली और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। बांस और बेत से बने उत्पाद जैसे टोकरियाँ, फर्नीचर और सजावट का सामान त्रिपुरा की शिल्प कला की अनमोल धरोहर है। यहाँ के कारीगर अपनी कला में माहिर हैं और हर वस्तु को हाथ से बनाते हैं, जो इसे खास बनाता है। त्रिपुरा का हथकरघा उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की रेशमी और सूती साड़ियाँ, खासकर रिसा और रिगनाई, न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय हैं। त्रिपुरा के लोक संगीत और नृत्य यहाँ की आत्मा है। यहाँ का होजागिरी नृत्य रियांग जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें वे मिट्टी के बर्तन और दिए लेकर अद्भुत संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। ये नृत्य फसल कटाई के बाद खुशी और उत्सव के अवसर पर किया जाता है। गौरिया नृत्य भी त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इन नृत्यों में दिखने वाली ऊर्जा और जीवंतता त्रिपुरा की संस्कृति का प्रतिबिंब है। त्रिपुरा का ऐतिहासिक महत्व इसकी वास्तुकला और स्मारकों में भी झलकता है। उज्जयंत महल, जो अगरतला में स्थित है, त्रिपुरा के राजाओं का शाही निवास था। इस महल की वास्तुकला, बगीचे और भव्यता इसे त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाते हैं। नीर महल, जो रुद्रसागर झील के बीच में स्थित है, राज्य का एकमात्र महल है। ये महल त्रिपुरा के शाही वैभव और संस्कृति की झलक देता है। त्रिपुरा का प्राकृतिक सौंदर्य इसे स्वर्ग के समान बना देता है। यहाँ के घने जंगल, पहाड़ियाँ और झरने प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। सिपाही जला वन्य जीव अभयारण्य और रोवा वन्य जीव अभयारण्य जैसे स्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन अभयारण्यों में पक्षियों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा ऊनाकोटी एक रहस्यमय स्थल है, जहां पहाड़ियों पर विशाल शिव मूर्तियां और शिलालेख हैं। इनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और ये स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए खास है। त्रिपुरा के खानपान में भी इसकी सांस्कृतिक विविधता का प्रभाव साफ दिखाई देता है। यहाँ का मोस्टिंग सेबा, जो टमाटर की चटनी है, बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा बांस के अंकुर की करी और बांगुई चावल त्रिपुरा के पारंपरिक व्यंजन हैं। रियांग जनजाति की पोर्क डिशेस और फिश स्टू भी यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में शामिल हैं। यहाँ के खाने में ताजगी और स्थानीय मसालों का खास स्वाद होता है, जो हर किसी को पसंद भी आता है। त्रिपुरा के त्योहार और मेले यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। खारची पूजा, जो 14 देवताओं की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गरिया पूजा, जो आदिवासी जनजातियों के फसल कटाई से जुड़ा त्योहार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गा पूजा, गंगा सप्तमी और कई अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन त्रिपुरा की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। त्रिपुरा आज के समय में विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगरतला, राज्य की राजधानी, अब स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और परंपरा का अद्भुत मेल है। यह छोटा सा राज्य अपनी अनोखी पहचान और विविधता के लिए जाना जाता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो त्रिपुरा जरूर आएं और इसकी खूबसूरती और संस्कृति को करीब से महसूस करें। ये राज्य न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है जो इसे जानने और देखने की चाहत रखता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्राची प्रिया।
महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनार तीर्थ कत युग धरि आहि से प्रकाशी समन्वयर अर्थ। महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनार तीर्थ कत युग धरि आहि से प्रकाशी समन्वयर अर्थ। महाबाहु ब्रह्मपुत्र।
श्रोताओं, उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक लगातार पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
कन्न कुबजरे परा बार भूया आहिसिले केई बंखते शंकर देव इयाते जनमिले।
हर सप्ताह हम आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे। पूर्वोत्तर डायरी के इस कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियों से आपको अवगत करवाते रहेंगे। आप भी अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के साथ हमसे जुड़े रहिए और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे रविवार को। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
मोरूर देखरे आजान पोकीरे मधुर जिकीर रोसीले दिल्ली रे दिलवारे आही हस्ती पुठिया किले पंचनदीर तेग बहादुरे धर्मर केतु गढ़िले অমন্নয়ার দেখুয়ালে কত প্রকাশ স্ফূর্ত। মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র।
আলেখ ও সংকলন কমল কুমার প্রজাপতি, প্রস্তুতি সহায়ক দানিশ জৈদি।
উত্তর পূর্ব অদ্ভুত রোমাঞ্চক আর মনোহারি উসকি ছটা কো সমেটতি রেডিও ডায়রি জিসকে পন্নে খুলতে হ্যায় हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।